HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
क्रिप्टो करेंसी के पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी निखिल से, और ये एपिसोड भी हम इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे। जी हाँ, इस एपिसोड में हमारे साथ फिर से बने हैं निखिल, और निखिल से हम पूछेंगे बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बेस्ट पॉइंट्स टू बाय इन द बेयर मार्केट के बारे में भी। जी हाँ, अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो इस एपिसोड को अंत तक सुनिएगा। वेलकम बैक टू द शो निखिल।
थैंक यू श्रीजन।
तो निखिल, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, जो भी आपने डेटा पॉइंट्स वगैरह स्टडी करे, आपने वो हमसे इनसाइट्स वगैरह शेयर करे, मुझे पूरा भरोसा है जिस भी लिसनर ने वो एपिसोड सुना होगा उसने काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स सीखी होंगी, वो भी फॉर फ्री। तो इस एपिसोड में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम हर मार्केट साइकिल को स्टडी कर रहे हैं, तो जैसा कि 2017 का साइकिल था जब मैं खुद भी बिटकॉइन में आया था, और 2017 के अराउंड आपको भी क्रिप्टो के बारे में आइडिया लगा था, तो अभी अगर हम देखते हैं 2017 और 18 साइकिल में बहुत सारे कॉइन्स ऐसे थे जो अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं क्रिएट कर पाए। इसके ऊपर आपके पास डेटा एनालिटिक्स से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
थैंक यू श्रीजन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ऑल्ट्स कॉइन बहुत ज़्यादा मेकिंग मनी वाली ट्रिक है और समथिंग, तो इसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने डाटा एनालाइज किया कि 2018 के टॉप कॉइन्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे, और उनकी परफॉर्मेंस 2022 में क्या थी, तो यू विल बी शॉक्ड कि मैंने 10 कॉइन्स को स्टडी किया और आउट ऑफ 10 कॉइन्स 8 कॉइन्स जो थे वो बहुत ही बैड परफॉर्म किए 2021 और 22 में। और उसका बहुत सारे रीज़न यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट्स में हाइप एकदम से बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, एंड प्रोजेक्ट्स की हाइप एकदम से बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी यूट्यूबर्स, और उसको ऐसे रिलेट करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते, बट उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, तो लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है जो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें पैसा इन्वेस्ट करके हम पैसा बना सकते हैं।
ओके, तो ऐसे कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं आपके हिसाब से जो 2018 में काफी अच्छा ग्रो कर रहे थे पर 2022 में वही सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पाए?
जैसे कि अगर मैंने कुछ कॉइन्स पे स्टडी किया, उसमें से एक है वैन चेन। वैन चेन का उस टाइम पे जो ऑल टाइम हाई था वो था $9.92 तक, और इसका 2021 पे जो बॉटम गया वो गया है अप्रोक्सीमेटली 0.07, तो आप देख सकते हैं कि ये 100x से भी नीचे चला गया, तो ये इस तरीके से हाइप क्रिएट की जाती है। सिमिलरली ऐसी और भी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे IOTA, इसका 2017 में जो ऑल टाइम हाई था वो $5 था, और अब इसका जो रियल वैल्यू है वो है 0.28।
ओके, जी हाँ, वीचेन और आयोटा ये दोनों कॉइंस मुझे याद हैं, इनके ऊपर काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी थे, और मैंने ऐसे खुद भी कॉइंस देखे जैसे ओमिसेगो या OMG, लाइटकॉइन और रिपल, जो मुझे क्लियरली याद हैं कि अपना ऑल टाइम हाई रिक्रिएट नहीं कर पाए। इसके अलावा आपने कोई और कॉइंस भी नोटिस करे हैं जो अपना ऑल टाइम हाई नहीं हिट कर पाए?
यस, मैंने एक और कॉइन इसमें नोट किया, सिया कॉइन। सिया कॉइन ने 2018 में जो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था वो था 0.11, और ये 2022 में अप्रोक्सीमेटली 0.003 तक चला गया। इसके साथ और भी दो दूसरे कॉइन्स थे जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लाइक वी चेन, जिन्होंने अपने 2018 के जो भी वैल्यू थी उससे 3-4x का उन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में, विच इज़ रियली ग्रेट। और इसके साथ एक और कॉइन जो मैंने स्टडी किया वो था XMR। XMR 2017-18 में $40-$45 के बीच में ट्रेड कर रहा था, और आज के टाइम पे वो $400 समथिंग के पास ट्रेड कर रहा है। तो आउट ऑफ 10 कॉइन्स ओनली 2 or 3 कॉइन्स आर देयर जो 2022 की मार्केट में सर्वाइव अच्छे से करे और प्रॉफिटेबल रहे ट्रेडर्स के लिए।
ओके, गॉट इट। तो इनके अलावा क्या आपने कुछ और कॉइन्स में प्लस या माइनस का पैटर्न कुछ नोटिस करा क्या निखिल, जो 2018 या 17 के हमारे कॉइन्स थे?
ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, BCH, ETC, जो इन कॉइन्स ने अपनी ऑल टाइम हाई वैल्यू फिर से क्रिएट नहीं कर पाए।
तो BCH, ETC या इवन और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स थे जैसे BSP वगैरह जो अपनी ऑल टाइम हाई वैल्यू रिक्रिएट नहीं कर पाए, तो अगर हम ये पूरा ट्रेंड देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2021 रन के भी बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होंगे जो 25 में नया ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं कर पाएंगे और शायद पुराने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे रहेंगे?
एग्जैक्टली, क्योंकि ये डाटा सिर्फ एक बार का नहीं है, सिमिलर डाटा 2014 का भी मैंने देखा था, तो मैक्सिमम कॉइन्स जो थे उस टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और बहुत कम ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी तक चल भी रहे हैं। तो ये 2025 में जो भी कॉइन्स अब आएंगे वो टोटली न्यू मार्केट की तरह आएंगे, या वो टेक्नोलॉजी सेम होगी लेकिन वो कॉइन्स विल बी न्यू।
ओके गॉट इट। जी हाँ, ये मैंने खुद भी नोट करा है कि लगभग 50% to 60% कॉइन्स चेंज हो जाते हैं टॉप 50 टू टॉप 100 के। जैसे इस बार लेयर वन कॉइन्स काफी आए, मेटावर्स के कॉइन्स आए, NFT कॉइन्स आए, गेमिंग कॉइन्स आए, एक्सी इन्फिनिटी उनमें से एक था, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के कॉइन्स आए। तो हो सकता है 2024-25 में उस टाइम के अराउंड जो नैरेटिव चल रहा होगा वहां पे वो कॉइन्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये निकल कर आ जाने के लिए कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर साइकिल में कुछ मार्केट फेवरेट्स होते हैं जो उस टाइम के बिल्कुल लोगों के मुंह के जो नाम होते हैं वही रहते हैं, तो ऐसे कॉइन्स कोई लेमैन, कोई न्यूबी कैसे रिसर्च कर सकता है इस टाइम पे, और क्या उसे ये रिसर्च करना भी चाहिए गिवन कि उसकी फर्स्ट बेयर मार्केट हो सकती है?
पहले हमें बेयर मार्केट में एंटर करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। बेसिकली जैसे ट्रेडिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। तो ये सारे ट्रेडिंग के डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरे एंड पे इन्वेस्टर वाला पार्ट है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इसमें पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें DCA टाइप की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक मार्केट में एंटर करने से पहले।
समझ गए। तो अगर कोई इंसान एक इन्वेस्टर है तो उस टाइम पे DCA कर सकता है, पीरियोडिक बाइंग कर सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकता है, और अगर कोई ट्रेडर है तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को चूज कर सकता है। और अगर एक इन्वेस्टर के पर्पज से बात करते हैं मान लीजिए, तो अभी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट बेयर मार्केट के लिए बेस्ट ऑल्ट कॉइंस टू बाय क्या रहेंगे?
ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है राइट नाउ, बिकॉज जैसे हमने अभी स्टडी किया कि लास्ट बेयर मार्केट के ऑलमोस्ट 80% कॉइन्स नेक्स्ट बुल मार्केट में वर्क नहीं करते, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क है। तो इसमें हम लेकिन मेरे कुछ फेवरेट कॉइन्स हैं जो इस पर मैं बेट ले रहा हूँ नेक्स्ट बुल मार्केट में, तो मैं उसके बारे में सजेस्ट आपको कर सकता हूँ। और वो उसके पीछे ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है तो वो नेक्स्ट बुल मार्केट या ये बेयर मार्केट अगर लंबी जाती है एक साल तक तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो हमें ये देखना है उसके पीछे लॉजिक कि जो भी हम कॉइन चूज करते हैं कि उसका फंडामेंटल क्या है और वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो नेक्स्ट बुल मार्केट में भी यूजफुल रहे।
ओके, तो आपके हिसाब से आप किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं और उन सेक्टर्स में ऐसे कोई हैंडपिक्ड कॉइन्स हैं जो आपने रिसर्च करके निकाले हैं जिनका आपको फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है आने वाले बुल मार्केट के लिए?
माय फेवरेट ऑल्ट कॉइन इज इथेरियम। रिसेंटली उसका इथेरियम मर्ज 2.0 अभी रिसेंटली हुआ है, और जैसे ही इन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क से और प्रूफ ऑफ स्टेक में गए हैं तो इसकी यूसेज जो अभी है उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ये ओल्ड कॉइन तो मेरा फेवरेट है और ये वो ओल्ड कॉइन है जिसने सारी बेयर मार्केट को सर्वाइव किया है, लाइक 2014 को भी सर्वाइव किया है, 2018 को भी सर्वाइव किया है, और अभी भी न्यू टेक्नोलॉजीज इस पर वर्क कर रही है और ये बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जैसे 80% डैप्स की जो एप्लीकेशन हैं वो इथेरियम नेटवर्क पर वर्क करती हैं, NFT में इथेरियम का पार्ट है, मेटावर्स में भी इथेरियम जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है एक बिग लेवल पे। तो मेजर प्रॉब्लम्स में इथेरियम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी इथेरियम इज द बेस्ट ओल्ड कॉइन। बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और कॉइन्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं सिमिलरली लाइक इथेरियम, जैसे सोल, रूनी एंड मैटिक। सो ये मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं फॉर नाउ।
जी हाँ, बल्कि इथेरियम को तो मैं कहता नहीं कि बेयर मार्केट सर्वाइव करा है, क्योंकि टेक्निकली इथेरियम ने हर बार बेयर मार्केट के बाद थ्राइव करा है, उसने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करा। इस बार भी वो लगभग $85 से ऑल द वे अप टू $4,500 तक गया था, और अगर हम पिछले मार्केट्स जैसा एक ड्रॉप देखते हैं बिटकॉइन के अंदर तो आई वोंट बी सरप्राइज टू सी इथेरियम एट अ रियली लो लेवल ऑफ $300-$400 और $500, और उसके बाद अगर वो अगले बुल मार्केट में $8,000 या $10,000 पे बहुत सारे इथेरियम मैक्सिमलिस्ट बात करते हैं वहां तक जाता है तो बहुत ही अच्छा ROI रहेगा। पर्सनली फॉर मी, मैं NFT, मेटावर्स, गेमिंग और DeFi सेक्टर्स के ऊपर काफी बुलिश हूं। कोई कॉइन स्पेसिफिक मेरे पास अभी एज सच नहीं है क्योंकि मैंने इनके ऊपर रिसर्च स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ एक फाइनल फ्लश टू द बॉटम का और उसके बाद मैं अपनी रिसर्च चालू करूंगा। बट अभी तक मुझे आपसे समझ आया निकल ये कि इथेरियम इज वन ऑल्ट कॉइन जिसपे आप बुलिश हैं, उसके साथ रून आपने मेंशन करा, सोलाना मेंशन करा, मैटिक मेंशन करा, तो ये सारे ऑल्ट कॉइंस डेफिनेटली क्वालिटी ऑल्ट कॉइंस हैं, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 वाले ऑल्ट कॉइंस हैं। एंड अगर कोई भी इन्वेस्टर इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है प्रोवाइडेड बाय डूइंग योर ओन रिसर्च। जी हाँ, जस्ट क्योंकि निखिल ने या मैंने इन कॉइन्स का नाम लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप इन कॉइन्स को बाय करना स्टार्ट कर दें। आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, अपना पूरा डेटा एनालाइज करके एक डिसीजन फॉर्म करना पड़ेगा जो आपके ही एनालिसिस के बेसिस पे हो। एक बार आप वो करते हैं तो आपकी अपनी पोर्टफोलियो में कन्विक्शन भी रहेगी। निखिल, अभी तक हमने जितनी बातें करी इन सब बातों के अलावा कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो आप डिस्कस करना चाहेंगे जहां से आपको लगता है कि लिसनर्स को काफी वैल्यू मिल सकती है?
एग्जैक्टली जैसे अभी हमने ऑल्ट्स कॉइन के बारे में बात किया और कौन कौन से हमारे फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं। अब ये ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, जो मैंने आपको बताए हैं इथेरियम से लेके मैटिक तक, ये मेरी रिसर्च है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। बट नेक्स्ट बुल मार्केट में हो सकता है सोलाना अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक ना करे, हो सकता है वो $100 तक ही जाए मैक्सिमम। बट ऐसी नेक्स्ट मार्केट में न्यू ऐसे और टेक्नोलॉजीज आएंगी जो इनसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी और उनकी हाइप इससे भी ज़्यादा होगी, तो हमें वो कॉइन्स पे वर्क करना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉइन्स की तरफ जाना पड़ेगा बेसिक।
ओके, गॉट इट। जी हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट मार्केट के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है, और अगर अभी हम देखें जो लोग नेक्स्ट मार्केट में अपना पैसा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ अच्छे स्किल्स भी डेवलप करने चाहिए। इस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस है एंड आप क्या सजेस्ट करेंगे?
बेयर मार्केट इज द बेस्ट टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स बेसिकली, और जैसे ये चाहे स्टॉक्स हो या क्रिप्टो हो, अगर हम इसमें न्यू चीज़ें हम सीख लें जो इस मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करें तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। बिकॉज प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, बेयर मार्केट आती जाएगी जाती जाएगी, लेकिन जो नॉलेज है वो हमेशा हमारे पास ही रहेगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना, बिकॉज क्रिप्टो का पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अराउंड है, और हम अगर हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ आती है तो हम किसी के भी कॉइन के वाइट पेपर को पढ़ के समझ पाएंगे कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो रियलिस्टिक है भी या नहीं। आपने ऐसे बहुत सारे कॉइन्स देखे होंगे जिनके वाइट पेपर पे बहुत कुछ लिखा होता है बट वो रियलिस्टिक नहीं होता। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते होंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, या ये स्केलेबल है या नहीं है, या ये सिर्फ एक पोंजी स्कीम की तरह वर्क कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली स्किल जो सीखनी चाहिए हमें वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, और उसके बाद जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट वो है सेंटिमेंटल एनालिसिस, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है बट उससे ऊपर भी जो है वो सेंटिमेंटल एनालिसिस है कि मार्केट की सेंटिमेंट्स अभी क्या कह रहे हैं, लाइक वर्ल्ड लेवल पे क्या है, कंट्री लेवल पे क्या है, कोई कंट्री बैन कर रही है तो किस रीजन से कर रही है, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर एलन मस्क जैसा एंटर कर रहा है मार्केट में तो उसका इफेक्ट इस मार्केट में क्या होगा और उसका फ्यूचर क्रिएट करना, तो ये सारी चीज़ें इसी में कवर होती हैं। फिर इस दो स्किल्स के बाद जो इम्पोर्टेंट स्किल इसमें आती है वो है फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। उसके बारे में तो मैं एज्यूम करता हूँ कि सबको पता ही है, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन टेक्निकल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटल है, बिकॉज फंडामेंटल आपको ये बताता है कि वो रियल प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है, वो क्या आपको बता रहा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या वो मार्केट को दे रहा है, अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है, या वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मैक्सिमम यूजर अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।
ओके, जी हाँ बिल्कुल, ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं हर इंसान को रिकमेंड करता हूँ कि वो अपनी रिसर्च करना शुरू करे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना स्टार्ट करे, क्योंकि बेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी लो है टू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड बुल मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका मल्टीफोल्ड आरओआई क्रिएट कर सकती है। तो क्रिप्टो करेंट के इस एपिसोड में निखिल ने जो सारी चीजें शेयर करी, आप इस पे जाइए एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हॉपिंग ऑन टू दिस एपिसोड निखिल, कोई फाइनल एडवाइस या फाइनल पीस ऑफ वर्ड जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ?
लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बेयर मार्केट में मनी इज एवरीथिंग, तो अपने मनी को होल्ड करके रखो तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टेड। इम्पेशेंट होके इस मार्केट में पैसे लगाने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मनी का लॉस ही होगा, तो आप पेशेंट रहिए और बहुत अच्छे कॉइन्स में ही लगाइए, लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें आपके मनी को बहुत हाईली रिस्क है, जैसे हमने लूना का देखा इतना बड़ा क्रैश हुआ लूना में, तो ऐसे ही अपने पैसों को भी बचा के रखिए और राइट टाइम पे बाइंग करिए और पीरियडिक एवरेजिंग करिए, DCA कीजिए एवरी वीक, एक स्मॉल अमाउंट 1% 2% से बाय कीजिए फॉर द नेक्स्ट 50 वीक्स 6 मंथ्स। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए और अपने पैसों को होल्ड करके रखिए रेदर देन लॉसिंग।
जी, मतलब एक साथ लमसम इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक बाइंग हो, चाहे वो फिर 50 वीक्स में हो या 100 वीक्स में हो या 25 वीक्स में हो, वो लिसनर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसी हिसाब से 2% 3% या 4% पोर्टफोलियो एलोकेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दीज इनसाइट्स। अगर लिसनर्स ये सुनने के बाद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं?
आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ट्विटर पे, मेरा यूजर नेम है लर्न विद निक। आप मुझे इजीली मैसेज कर सकते हैं या मुझे कोई ट्वीट कर सकते हैं या मुझे टैग कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन।
अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड निखिल। आई एम श्योर जितने भी लोगों ने एपिसोड सुना होगा उन्होंने काफी न्यू और वैल्यूएबल चीजें यहाँ पे सीखी होंगी। तो क्रिप्टो करेंट के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इसके अगले एपिसोड में जहाँ पर हम कुछ और FAQs के बारे में बात करेंगे और वो हमारा होगा फाइनल एपिसोड।
This was an HD Smartcast original.
HD Smartcast.